نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرض کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے جتنی بات ہوئی ہے اس کے بعد سے جو چند سوالات ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ قرض لینے کی ممانعت ہے یا سود پر قرض لینے کی ممانعت ہے؟ ممانعت سے مراد یعنی منع کیا گیا. اگر کوئی اسلامی ادارہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر قرض دے رہا ہو گھر خریدنے کے لیے تو کیا اتنی زیادہ رقم سے گھر خریدنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں آپ کے سوال میں. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا قرض لینے کی ممانعت ہے یا سود پر قرض لینے کی. اس جملے کو جب میں بولوں گی بڑے شعور سے سنیے اور لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. دیکھیے قرض لینا ناپسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جائز ہے, حلال ہے. سود حرام ہے. یعنی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک گرم اور ایک ٹھنڈی چیز کو ملا کر مائلڈ نہ کہیں بنا دیں. تو قرض لیا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے. مجبوری میں لیا جانا اور دیا جانا دونوں اس کے دلائل موجود ہیں, ہم دیکھ چکے ڈیٹیل سے. لیکن سود تو بالکل ہی ایک سانپ ہے. میں تو سود کو سانپ سمجھتی ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے اوپر ایک پوری بھرپور سٹنگ کریں گے تاکہ ہمیں اس چیز کی شدت کا احساس ہو. سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اگر کوئی اسلامی ادارہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر قرض دے رہا ہو. پہلی بات ہے کیوں. کوئی اسلامی ادارہ یعنی اسلامی بینک کا پوچھ رہے ہیں, اسلامی بینک کے نام پہ کوئی سروس دے رہا ہے آپ کو, تو چیک کیجئے کہ وہ یہ منی آپ کو کہاں سے دے رہے ہیں. دیکھیے نا کہ جہاں جاننے والے آپ کو 3-4 ہزار ڈالر نہ دے سکے, وہاں ایک انجان بندہ, اور وہ صرف آپ ہی کو نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو بھی آفر کر رہا ہوگا نا, آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں. تو ڈیفینیٹلی کہ اس میں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یا تو وہ ان کا بزنس ہوگا یا پھر واقعی وہ کوئی بہت خیر خواہی ہے. تو اگر کوئی دیتا ہے اور دینے میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن وہ کیوں دے رہا ہے, کیسے دے رہا ہے. ہاں جب وہ دے دے 3-4 لاکھ ڈالر تو گھر خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آف کورس لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب واپس کریں گے, بس سمپل سی بات یاد رکھیں کہ قرض کی کوئی بھی چیز جب واپس کی جائے تو جس نے قرض دیا ہے وہ زیادہ نہیں مانگ سکتا, وہ سود ہے. آپ اپنی خوشی سے ٹوٹی چیز کو جوڑی بھی دے دیں, بڑھا کے دے دیں, تو یہ آپ کا احسان ہوگا. ٹھیک ہے, بات واضح. چلیے دوسرا سوال ہے, جو لوگ مقرر شدہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور تجارت نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے کے امکان نہیں ہوتے اور ماہانہ بچت بھی مقرر ہوتی ہے, اس صورت میں وہ شاید کبھی اتنے پیسے نہ بچا سکیں کہ گھر خرید سکیں, گھر جو عام طور پر بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے. جی دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے, پہلی بات. دوسری بات جو بات میں کہنے لگی ہوں بڑے شعور سے کہوں گی, میرا پورا خاندان جو ہے نا وہ بزنس, ہر فیملی کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا, ہمارے خاندان میں شاید انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں کہ کون جاب کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ جو پڑھے لکھے لڑکے اچھی اچھی پڑھائی کر چکے ہیں, تو کوئی کمپیوٹر جاب کر دے, دیٹس اٹ. میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں اور اگر ان کی جاب لگی ہوئی ہے اور ان کا ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے, دے آر مور ہیپی دین دا کروڑ پتی بزنس مین. وجہ کہ آپ کے کروڑوں آتا ہے اور جب ایک سلمپ آتا ہے تو اس میں ڈوبتا بھی بہت ہے. تو اگر آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا خوش قسمت کون ہے, تو فرمایا کہ رزقتا و کفیتا, یعنی کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس کو رزق دیا گیا کفایت کا, مطلب گھر کا کرایہ نکل آیا, بچوں کی سکولوں کی فیسیں نکل آئیں. اگر ہم اپنے ریسورسز کو صحیح یوز کریں نا, تو ایک بندہ جاب میں رہ کر کرائے کے گھر میں زیادہ خوش رہے گا بنسبت اس شخص کے جس نے اپنے اوپر بہت ساری لائبلٹیز ڈال لی اور بعد میں بر وقت وہ اس کو پے نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو اپنا گھر لینا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کی جاب لگی ہوئی اور آپ اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, تو بس فائن, آپ اسی کو لے کر چلتے جائیے, میری یہ بات ہے. تیسرا ان کے, کیا ایجوکیشن لون لیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی زیادہ کرنٹ کوسچن ہے, یعنی آج کے دور کا, کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر جب شروع میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد بہت زیادہ بعد میں پرابلم آتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپکس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے جو لیں گے وہ ہم لیں گے سود کے بارے میں جو سیمینار رکھیں گے. لیکن یہاں آپ نے پوچھا تو اب آپ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو پڑھنا ہے, آپ اپنے اوپر لیجئے نا, آپ یہ نہ سوچیں نا کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ کے بچے نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, अब आप और मैं जिन मुल्कों में रहे या जहाँ से आए और आज भी वहाँ, अगर आप देखिए तो क्या हम वहाँ बच्चों को नहीं लोग पढ़ाते? पढ़ाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा बिग इशू कहाँ आता है जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सहूलत वाली वो आपको किस्तें दिखाते हैं और फिर आपको कहते हैं कि आप अपना स्टडी लोन ऑफ़र करें या अपने बच्चों का स्टडी लोन ऑफ़र कर दें, ले लें, यानी उसको अप्लाई करते हैं और लोग ले लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टडी लोन चूँकि मिल रहा है तो ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा जाल है जिसके अंदर बंदा फंसता है और बाद में वो आपने देखा है कि सिर्फ स्टडी लोन के ऊपर फिर जो किस्तें, अब जब ऐसे हालात आते हैं ना तो फिर होता क्या कि वो फिर उसकी किस्तें अदा करने के लिए जॉब करते हैं और उस जॉब में फिर एक वो एक छोटे दायरे के ऊपर दूसरा दायरा है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप पाकिस्तान में आपका कोई ज़मीन का टुकड़ा है वो बेच के चले, आप कहते हैं ना कि मिसाल है बाहर के मुल्कों में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये तो बहुत मुश्किल है और ये तो इम्पॉसिबल है, तो आप क्या करें? पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी आपकी 20 लाख रुपए की है या 50 लाख की लगा लेते, आप उसको बेच के ना उसके पैसे समझें कि वो आपकी नहीं रही। अब आप उसके पैसे को अपने किसी एक बच्चे की जिसके लिए स्टडी लोन लेना था उसकी पढ़ाई पे खास करते हैं। कल भी तो वो घर बच्चे नहीं लेना ना, आप बच्चों के लिए कमा के संभालते हैं ना, तो आप उनको पढ़ाई ही गिफ्ट में दे दें बजाय इसके कि वो इन चीज़ों पर आए। जी बिल्कुल, आपने जो कही मैं आपकी बात समझ गई। पहली बात देखिए कि अगर हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से रेज करें शुरू से लेके बाद में तक, तो बड़े होने तक वो बच्चे जो सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं उनका जहन ना सिर्फ ये कि उस सब्जेक्ट के साथ बल्कि एक अच्छे मुसलमान बनने पे भी बन चुका होता है। मिसाल है कि जैसे मुझे पता है कि सऊदी अरब में जितनी भी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई एजुकेशन जिसमें दीन भी है दुनिया भी है, उसके बाद आपको हज़ारों दिरहम की जॉब मिलती है, 100% फ्री है। सऊदी अरब में जितने लोग पढ़ने जाते हैं इस फ्री, कभी आप एक लम्हे के लिए तो सोचें कि वजह क्या है? टैक्स सऊदी अरब में नहीं है। मैं सिर्फ सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब समझ के नहीं ले रही इस वक्त, ये बताने के लिए कि इट्स क्वाइट पॉसिबल आज के दौर में इस ज़मीन के एक टुकड़े पे ये पॉसिबल है कि टैक्स भी ना लोग दें और उनके बच्चों को पढ़ाई भी फ्री मिल रही है जो रहते हैं वट एवर, और उनकी रिहाइश और सब कुछ फ्री है। और आप जब उधर से 5-7 घंटे ट्रैवल करके कहीं और चले जाते हैं जहाज़ में, तो वहाँ तो सांस लेना भी ऐसे लगता है सूद और कर्ज के बगैर मुमकिन नहीं। ये स्ट्रेटजीज़ है। इवन जिन मुल्कों में हम लोग रहते हैं, अगर आप इन मुल्कों का अपने नज़र में रख के देख लीजिए, तो अगर ये लोग वाकई हकीकत में इस चीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, इनके अपने मुल्कों से ये सारा सेटअप ख़त्म हो सकता है। ये सिर्फ़ एक कह लीजिए कि लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स वाला कल्चर है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। आप बहुत अच्छा, देखिए इसको समझ लीजिए, ये इनका सवाल ये है कि आप किसी और के चलते काम में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आप काम नहीं करते, सिर्फ आपका पैसा लगता है। तो बिज़नेस की तो आप टर्म्स जितनी मर्जी मुझसे सीख लें, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। $100 है ना, तो उसके 3 हिस्से बनते हैं। मसलन आप 2 पार्टनर हैं, आप दोनों पार्टनर्स ने अगर पैसा उसमें लगाना है ना, तो जो बिज़नेस का प्रॉफिट आएगा ना वो कैसे बनेगा? 1% कहता है मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, 50,000 मैं डालूंगा, 50 तुम डालना, $1,00,000 से हम बिज़नेस करते हैं। अब वो कहता है कि ठीक है। तीसरा कहता है कि ठीक है मैं साथ काम भी करूंगा, तो जो 1,50 है वो कहते हैं मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा। असूलन तो क्या होना चाहिए था कि दोनों बिज़नेस को 50-50 में डालते, आधा उसका आधा इसका। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो $1,00,000 के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा ना उसके 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्से किस तरह से होंगे? एक हिस्सा मिल जाएगा जिसने पैसे लगाया, उतना ही इक्विवेलेंट हिस्सा मिल जाएगा जिसने दूसरे ने लगाया, 1/3 तीसरे को काम करने का मिल जाएगा। या अपनी अपनी टर्म्स होती हैं, कोई अपने पे रख लेगा कि आई एम वर्किंग बट आई एम टेकिंग द पे। ठीक है, तो पैसा एज सुन जिसने पैसा लगाया हुआ ही विल गेट द प्रॉफिट। इसमें लोगों ने बहुत सारे लूप होल्स रखे हुए हैं। किसी ने कहा कि मैंने किसी को पैसे दिए, अब सुनिए, मिसाल है कि $10,000 किसी को दे दिए और वो मुझे हर महीने इस पर फिक्स $1,000 भी दे रहे हैं, और फिर 1 साल बाद वो मुझे $1,000 मेरा डॉलर पूरा वापस भी कर देंगे। प्ली क्या लेते हैं कि चूंकि $1,000 उन्होंने बिजनेस में लगाया हुआ था तो मैंने उसकी बुनियाद पे प्रॉफिट ले लिया, लेकिन एंड पे $1,000 मुझे वापस अपना एज इट इज़ मिलेगा। दिस इज सूद। सूद कारोबार में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क फैक्टर है। सूद में रिस्क नहीं है। फिर बातें सारी सूद पे जा रही हैं क्योंकि ये दोनों बहन भाई लगते हैं ना, कर्ज और सूद। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात देती हूँ कि मेरे पास यहाँ $20 का नोट हो, मैं सबा से कहूँ कि सबा मुझे इसका चेंज ला दें, हाउ मच चेंज शी शुड गिव मी $20 डॉलर बिल्स हों, 5 का हो, 10 को, एट द एंड द सम शुड बी 20। ये है फेयर। मैं इनको कहूँ के देखे मैं 20 का नोट दे रही हूँ, नया नोट है ये, लेकिन इसके जवाब में जो चेंज आप मुझे देंगी ना वो 21 देंगी, तो $1 इज सूद। वाई? पैसे के बदले पैसा खरीदना। आप सूद क्या होता है? पैसों से पैसे खरीदना। हम पैसों से कपड़े खरीद सकते हैं, हम पैसों से जूते खरीद सकते हैं, हम पैसों से ग्रोसरी खरीद सकते हैं, बट पैसों से पैसे खरीदने को सूद कहते हैं। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ये चीज़ उसमें आ जाएगी। ठीक है, आपने किसी को सिंपल पैसे दे दिए और उसमें आपका पूरा रिस्क मौजूद है, आपने इन्वेस्ट किया और इसमें फिक्स अमाउंट पे आप प्रॉफिट नहीं ले सकते उनसे, आपको पता है कि ये डूब भी सकते हैं सारे, आपको ज़्यादा भी हो सकते हैं, पूरे हर महीने की परसेंटेज बनेगी कि इस माह में कितना प्रॉफिट आया उसमें से आपके पैसों का कितना, इट्स 100% अलाउड, इसमें कोई बुरी बात नहीं जी। वो तो फिर 100% रिस्क होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हम यहाँ ह्यूस्टन में थे, अभी आज से 10-15 साल हो गए, बहुत अच्छे ब्रदर है, मुझे नाम नहीं याद, इस्लामिकली उन्होंने मेम्फिस में या कहाँ कोई एक उन्होंने प्रोजेक्ट था, वो लैंड लेकर जगह लेकर बनाते थे, वो हमारे पास ह्यूस्टन सबके पास आए, जैसे लोग आके अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, और भी लोग थे, हम भी थे। एनीवे किस्सा मुख्तसर के उन्होंने बताया कि फ़लां मुल्क जगह ऐसी है, वहाँ एक कोई ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तो वो बिकने पे और बहुत सस्ता है वट एवर, तो हम सोचते हैं कि वहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी का आगाज़ करें, कुछ इस किस्म की डील्स थी, तो हम वो सारा ख़रीद लेते हैं, तो फिर वहाँ हम इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करके मुस्लिम एरिया करेंगे। खैर, किस्सा मुख्तसर के उन्होंने कहा कि आई नीड इन्वेस्टर्स, अब जो भी उसकी डिटेल्स ही उसको एक साइड पे कर देते हैं। किस्सा मुख्तसर हुआ क्या कि मुझे ये चीज़ बहुत ही उसमें अपील की कि वहाँ सब मुस्लिम होंगे हम लोग और एक मुस्लिम प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा। इत्तेफाक़ देखिए, मेरे हस्बैंड को किसी भी तरफ से उस वक्त लमसम में कुछ मनी आई हुई थी अपने इनहेरिटेंस में, तो हमने मशवरा किया कि लगा देते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो मनी उनको दी और आज तक उसमें देने के 2-3 महीने बाद उस प्रॉपर्टी पे कोई मुकदमा निकल आया हुआ था। वो ब्रदर जिन्होंने, ऑफकोर्स उनकी नीयत अच्छी थी, ही वाज, बट उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर कोई प्रॉब्लम आ गया हुआ था। एक पैनी का बच्चा भी हमें वापस नहीं मिला, एंड वी नेवर आस्क फॉर दैट। शुरू में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन इन लोगों की मेल्स में चलती रही, उन्होंने अपना पोजीशन बता दी कि दिस इज़ द थिंग, अब हम क्या के हमसे धोखा किया, कभी भी नहीं कहना चाहिए। हमेशा अपनी अकल से फैसला करें, फिर उसके बाद अल्लाह पे राजी रहे, जब फैसला करें तो फिर ठीक है। $1 के बदले जी करेंसी चेंज, देखिए इसको समझ लीजिए, अगर एक सर्विस है, जैसे वेस्टर्न यूनियन आपको एक सर्विस दे रहा है या पेपॉल एक सर्विस दे रहा है, जो बैंक्स देते हैं, अगर तो वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, एक फिक्स फीस है कि आप इतने करें, तो इट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर वो उसको किसी हिडन चीज़ से करें तो वो और चीज़ है। बैंकों में भी अगर आपको कोई अपनी फीस के तौर पे कोई चीज़ दे रहा है तो वो और चीज़ है, ऑफर करते हैं ना सर्विस, लेकिन अगर उसमें क्या है कि आप हमें एक दें और उसके बाद हम आपको उसके 0.8 देंगे, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, अल्लाह ताला बचा के रखे।